नमो महावदन्याय ये सब तत्व क्या है इसको समझिए। उन्होंने सबसे पहले कृष्ण तत्व के संबंध में बताया, इसने आरंभ किया ईश्वर परम कृष्ण प्रतिदानंद परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण ईश्वरों को भी ईश्वर परमेश्वर और स्वयं भगवान है, कारण है समस्त कारणों के कारण है, अनंत वैकुंठ और अनंत भगवान के औदा और अनंत ब्रह्म है, ये सब के आधार है, वैकुंठों के अवतारों के और प्रतिदान जो उनका शरीर है विभिन्न मंत्र ये सब ऐश्वर्य पर शक्ति और स्वरत से ये का वृंदावन में हमने क्या बताया ज्ञान का थोड़ा सा संक्षिप्त में बताओ कि प्रतिमा प्रतिमुखता व्यापारी कवि सत्याम अमृता राधा को राधा प्रयाण ये इसलिए बताया ये अप्राकृत नवीन मदन वृंदावन देते और वो सबके चित्त को आकर्षित करने वाले यहाँ तक कि अपने को भी आकर्षित करते, इसलिए श्लोक में तारकाकालीन श्याम आलिका और श्रीमती राधिका जी को भी आपस अपने रूप से सौंदर्य से जुड़ते ये करते हैं, इसलिए सर्वकित आकर्षक साक्षात मनमत मनमत के लिए इसका इसकी व्याख्या है। श्रृंगार रस राज मय मुक्ति का कृष्ण कहते हैं श्रृंगार श्रृंगार में क्या ऊपर में सबसे श्रेष्ठ ऊपर में उनका स्थान विराजमान रसों के राजा है कृष्ण। रसों में ये 12 रस जो है गौ और उन सबके राजा है, ये कहाँ पर बैठे हैं सबसे सिंह पर सबसे उन्नत स्थान पर ये बैठते हैं कौन ये कृष्ण, इसलिए श्रृंगार रस राजमय मूर्ति अतएव आत्मपज्ञम तो सर्वचित्त, इसलिए सर्वचित्त सबके चित्त को हरण करने वाले यहाँ तक कि आत्मा पर्यंत अपने को भी अपने को अपने देकर के भी उनका चित्त हरण हो जाता है, अपने को देकर के अपने ही रुद्ध हो जाते हैं, अपने रूप पर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गीत गोविंद ने इसका एक प्रमाण दिया, भागवत में भी इसके हैं और उसमें भी कहा ये लिए हैं गीत गोविंद। हनुमंजलि यहाँ पर अतएव आत्मसंयम सर्वचित्त कने से कुछ फटर फटर लग जाता है, क्या लगता है सब लोगों के चित्त को हरण करने वाले हैं कि नहीं हैं, किंतु विशेष 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 एक ही इसमें नहीं, जैसे बेरो इसलिए कारण में सर्व माने
वहां पर तो सब
भाव से जिसके अंदर में है उनको ही चित्त को हरण करना, सबका नहीं,
इन सबों के अंदर ये भाव है उन सबको
और लोगों को अच्छा लग सकता है, चित्त को हरण करना माने क्या, जब चित्त हरण कर लिया तो उसका अपना कुछ रहा नहीं तो वो प्रमत्त हो जाएगा। तो वहां पर पशु थे, गायें इत्यादि सब सुन रही है, बछड़े सुन रहे हैं, किंतु उनका चित्त एकदम ऐसे नहीं ले लिया कि वो एकदम पागल हो और कृष्ण के पास में दौड़ करके चले आते, वो गोपियां कृष्ण की बंसी ध्वनि इत्यादि ये सुन करके सबका चित्त मोहित हो जाता है। इसलिए कहा कि जिसमें जो भाव है कृष्ण को देखकर के उसी भाव से किंतु आकर्षित, जैसे कृष्ण में सब रहते हैं है ना, मधुर में सब रस है, शांत दास तथ्य बाधल इत्यादि सभी तो गोपियों में तो सब है, गोपियां आकर्षित होती और कृष्ण में भी सब रस है, वो सब रस के आस्वादक आस्वाद्य है और सबके आस्वादक भी है,
मैंने विषय आश्रय हुए हैं,
विषय भी है किस रूप में किस में था, तो विषय स्वरूप में एक ही कृष्ण को देख करके विभिन्न लोगों का कृष्ण के प्रति विभिन्न भाव पैदा, एक रूप में नहीं होगा, इस पर है कोई पुत्र के रूप में, कहीं सखा के रूप में, कभी दास प्रभु के रूप में, कहीं प्रिय विभिन्न विभिन्न रूपों में सबके चित्तार हो सकते हैं, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं गोपियों जैसे सबके चित्तार में जिनमें यह भाव होगा उसी को उसी के लिए ऐसा सब चित्तार होंगे, दूसरों के लिए नहीं। यशोदा मैया सुन करके या और सब गोपियां हैं जो मातृभाव भाव पर या सखा है या दास है ये सब सुनेंगे, या दुग्ध भाव वाले जो हैं कंस इत्यादि उनको कैसा हो, उनके चित्त को हरण होगा नहीं, इसलिए जिसमें जैसा भाव है उसके अनुरूप ही सबको एक समान नहीं होगा, इसलिए सबसे अधिक चित्त हरण होता है उन गोपियों का जो उस भाव वाली है, मधुर भाव वाली, उन्हीं को आकर्षण कर ऐसा करेंगे चित्त जैसे कि वो सब तोड़ फाड़ करके कृष्ण के पास
इसलिए कृष्ण का नाम भी मधुर है, कृष्ण की कथा भी मधुर है, किंतु किसी को अच्छी लगती है तो किसी को कम अच्छी लगती है, किसी को तिहाती नहीं है, किसी में ममता और रुचि नहीं होती है, और किसी को देख करके क्रोध आ जाता है, ऐसा नहीं, सब भावों के ऊपर में निर्भर करता है। तो यहाँ पर सब चित्त ये बताया जो ऐसी गोपियां जिनके हृदय में ऐसे भाव है, ऐसे सब गोपियों को ही उन्होंने आकर्षित किया, क्योंकि श्रृंगार रस के संबंध में कर रहा है। तब से याद रखना चाहिए श्रृंगार रस राजमय मूर्ति धर और आत्म पर्यंत अपने को भी जब वो श्रृंगार रस के उपयुक्त मूर्ति धारण करते हैं अपने को भी आकर्षित कर ले। कैसे कर लेते हैं? राधिका इव, जैसे राधिका कृष्ण रूप आस्वादन करने की लालसा होती है, ऐसे कृष्ण के भी स्वयं राधिका बन करके उस रूप को दर्शन करने की या आस्वादन करने की इच्छा। ऐसे ही सब माने यहाँ पर क्या उस भाव वाला, मैं तो सभी लोगों को इसी रूप में हो जाता, सबकाओं को भी माताओं को भी तो हो जाता, ऐसा नहीं। विश्व एक जिससे एक अनुरंजन जिससे एक शाम मैंने एक शाम मैंने गोपी विश्व माने सर्व विश्व माने विश्व वाले यहाँ पर विश्व माने भी होता है सर्व
बहुत से विश्व
सर्वम जैसे समूह होता है या सब होता है ऐसा ये जो सब हैं ये माने गोपियां अनुरंजन ही न जने आनंद इंदिवर अनुरंजन न अनुराग के द्वारा रंजन करके अनुराग से लेकर के महाभाव इत्यादि सब उसके द्वारा अपने रूप के द्वारा सबके अंदर में अनुरंजन करते हैं। अनुरंजन माने उसके चित्त को रंग देने का नाम है अनुरंजन, अपने भावों से अपने प्राप्ति कराने के भावों से सबको एकदम उसके हृदय को एकदम रंग दे। आनंद और उनके हृदय में आनंद उत्पन्न कर देते हैं, आनंद उल्लास ज्ञान उत्पन्न कर उत्कंठा जाकर कर देते हैं। इसके द्वारा श्याम कोमलां कोमलई रूपानयनम अंगई अनंगो उत्सवम वे अपने अत्यंत श्यामल और कोमल अंगों के भावों को उत्पन्न करके उनके अंदर में आनंद और की आनंद के द्वारा उनके चित्त को अनुरंजन करके अनंग उत्सव प्रस्तुत कर दे। प्रछंदम ब्रज सुंदरी ही अविता प्रचंद मालिंगिक स्वच्छंदम प्रछंद मने शांत बात बात जितने भी बाधाएं जितनी भी बाधाएं हैं उन सब बाधाओं को पाकर स्वच्छंद रूप से जैसे गोपियां कृष्ण के साथ में मिली हुई ऐसे स्वच्छंद रूप से कृष्ण से मिलकर अब कोई भी अंदर में बाधा विघ्न इत्यादि समाज कुल जाति अथवा अंग संबंधी या कोई भी अपाधा नहीं रही, इसलिए इन सब को दूर करके सब प्रकार से प्रत्यंग मालिंगित कृष्ण को अपने समस्त अंगों के द्वारा समस्त अंगों को अलिंगित करके मूर्तिमान एकदम मूर्तिमान जो श्रृंगार के स्वरूप कृष्ण हैं हे सखी ये हरि मुग्धो मधौ हृद्धो हरि तीर्थ ऐसे जो हरि हैं मुग्ध होकर के स्वयं स्वयं ही मुग्ध हो रहे हैं मुग्ध होकर के मधौ ये बसंत ऋतु में पीड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर मुग्ध शब्द के लिए कहा कि अपने भी उसमें मुग्ध हो जाते हैं, और की तो बात है, गोपियां तो मुग्ध हो ही जाती हैं, अपने आप भी उस रूप को देकर के मुग्ध हो जाते हैं। लक्ष्मी कांत आदि और तारे घरे मौत इनका यह श्रृंगार प्रारूप ऐसा है, और की तो बात क्या, लक्ष्मी कांत जो नारायण आदि आदि मैंने वहां से आरंभ करके और नीचे पर्यंत जितने भी शब्द वैभव अवतार हैं, ये विष्णु तत्व हैं या भगवत तत्व हैं, उन भगवत तत्वों का सबका ही आकर्षण उसमें कर दे, वो सभी लोग उसमें के को देकर के मन, इसमें बलदेव प्रभु भी और चार वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध इत्यादि भी संकर्षण, ये सभी और वहां से लेकर के नारायण और नीचे वाले जितने सब जितने भी भगवत तत्व, और फिर लक्ष्मी आदि उनकी जो लक्ष्मियां हैं नारी गणों को भी आकर्षण करते हैं, ये कृष्ण का ऐसा इसके लिए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 89 अध्याय से एक श्लोक बतला है कृष्ण के से महासंकर्षण मूल संकर्षण से महासंकर्षण और उनसे नारायण है कृष्ण, वहां पर वासुदेव है, वासुदेव से ये नारायण है, उनका परिभव प्रकाश और बाद में कारणार्थ दिखाई। अब ये कर्णार्थ दिखाई विष्णु ही भूमा पुरुष है, यही भूमा पुरुष महाकालपुर में रहते हैं,
महाकाल शब्द तो ये
भयानक लगता है जी को देखने सुनने से होता बहुत भयानक, किंतु बड़े कोमल इनके लिए भयानक, दूतों के लिए भयानक, ऐसे ये महाकाल जीवन सिंह समुद्र बाहर आ रहा है मां, और उसमें अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, और उसके बीचों में
उस कृष्ण का भजन करने वाले ये भयानक स्वरूप जो है, ये नित्य जी के
भयानक वस्तुओं के अंदर में वो है ना,
तो इससे भजन में तुम्हें बाधा मिलता
वहां पर भजन का प्यार भजन करने वाले ना जाए नहीं क्यों,
उनका जो मंत्र जब करते हैं
उनका विद्यारे वो ब्रह्मा इत्यादि जैसे लोग हैं, उनका
मंत्र जब करते
तो हम लोग इसलिए जपते हैं कि हमारे जीव में बाधाएं हैं, बस इतना है, जितने अशुभ लोग हैं उनको दे करके दर्द जितने बाधा भी दर्द है हम लोग किस लिए, उनका भजन उपासना करते हैं उनको पाने के लिए नहीं, हम लोग को बस इतना ही है। यहाँ पर एक लक्ष्मीकांत इत्यादि के लिए और उनकी लक्ष्मी के लिए हर चित्त हरण करते हैं, ये इसके लिए यह पहला भगवान को शक्तिमान पुरुष में, तो पुरुषों का पुरुषों के प्रति ऐसा रूप देकर के उनका भी चित्त आकर्षित हो जाता है, ये आश्चर्य की बात, किंतु यह ऐसा हो जाता है, कृष्ण की भी इच्छा होती है अपने रूप को देखकर के मैं स्त्री बनकर गोपी बनकर के राधिका के समान इस रूप का स्वादन, कृष्ण को खुद हो जाता तो उनके अवतारों का क्यों नहीं होगा, इसलिए कृष्ण दास को बुलाती उत्थान, ये सब बातें ये सब होने के पहले के पन्नी से शामिल से पहले कहीं भी नहीं हो सकता है, देवताएं के ग्रंथों में कहीं हो रूप उत्थान अथवा हिंदुस्तान इत्यादि के ग्रंथों में जरूर होगा, क्योंकि रघुनाथ दास को शामिल नहीं होने का, किंतु इस रूप में स्पष्ट रूप में इस तरह से अब उसी को शास्त्र से प्रमाण लेकर के बतला रहे हैं किस प्रकार से कृष्ण का रूप कौन हो
ब्रजनंदन
श्रृंगार। कुछ लोग कहते हैं जिस गोलोक में वृंदावन में गोलोक वृंदावन में गोकुल में कृष्ण का जन्म नहीं होता
गोलोक
और गोकुल उनका जन्म नहीं
जन्म केवल इसी लोग का
क्योंकि वहाँ अभिमान के रूप में होता है जैसे कृष्ण हमारे बात है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर पार्थिव भाव है तो इसलिए वहाँ पर श्रृंगार रस भी नहीं होगा। श्रृंगार रस होगा तब नहीं होगा इसलिए श्रृंगार रस भी नहीं होगा पार्थिव में भावना भी नहीं है श्रृंगार रस भी तो वहाँ क्या है क्या
उनका
क्या भाव है। अरे मेरे समझ से तो जो वहाँ लीला है नहीं वहाँ पर ये कैसे उतरे उतरती है तो या प्रकटित होती है प्रकाशित होती है तो वहाँ जो लीला है नहीं है तो यहाँ पर कैसे प्रकट होती है इसलिए वहाँ जो लीला है वही पर उसी का है यहाँ पर प्रतिबिंब हो सकता है या प्रकाश हो सकता है। हमारे गोसाई ने कहा जो जो वहाँ लीला है यही पर प्रकट और अप्रकट का अंतर यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर दिखा नहीं जाता।
संदर्भ में कहा है कि ये वहाँ ये नहीं है तीन महीने का ये नहीं जो माफिर विरह जो विप्रलम्ब है ये नहीं है वो एक दिन ऐसे ही अनुभव होता है कि आज ही कृष्ण मिले ऐसे ब्रजवासियों को अनुभव
किंतु ऐसा नहीं जो है ही नहीं पर एक न कोई लाख प्रकोष्ठ मिल सकता है अनंत प्रकाश मिल सकता एक प्रकोष्ठ में यही होगा
क्योंकि नित्य प्रकाश है तो
श्रृंगारी रस नहीं होगा तो फिर होगा क्या इसे जरूर होगा उनका जन्म भी है
इधर जैसे जन्म ऐसे जन्म है जन्म का भाव है और धूप के साइन पूर्व ने दिखाया
अब वहाँ पर जाएंगे तो विशेष रूप से बतलाएंगे
आपने पहले
बताया तो उसकी छाया यहाँ पर नहीं होगा
आपने पहले बताया जन्म का भाव है अरे आपने देख करके बताइए
अच्छा मजा मैं जीवयो विदित सुना मयोपनीता भूमि धर्म गुप्त कलाम तेरना अवने भरा सुना सत्रे भूजत स्वरे स्वरे मंत्री ने द्विजात्मा सुना ये बात है द्वारकापुरी में जब कृष्ण थे बलदेव प्रद्युम्न अनुरुद्ध इत्यादि के तो अंतिम समय में जब कृष्ण को जाने का अप्रकट लीला करने का हुआ उसके कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी उसको लड़का होता था उत्पन्न संतान और साथ ही साथ में वो संतान मर जाती तो ऐसे ही उसके एक दो तीन चार पांच लड़के हुए वो मर गए तो वो ब्राह्मण प्रत्येक मरने के बाद में बच्चे को लेकर सब उसका लेकर अपने शरीर और राज दरबार में आ जाता और वहां पर पता भी राजा के पाप से हमारे लड़के मर
अकाल मृत्यु
ये राजा लोग पाप करते हैं और भोग करना पड़ता है प्रजाओं को और कुछ गाली बलौज करके निंदा इत्यादि करके चला वहीं पर छोड़ दिया। ऐसे कुछ दिन करने के बाद में एक दिन फिर लड़का उसका जन्मा और फिर वो मर वो वहां आकर के और विलाप करने लगा विलाप करके कृष्ण को बलदेव को दिन अनुज सबको ये सभी पापी हैं ऐसे इन्हीं के पाप से ही हमारा कैसे लड़ ये कहने लगे अर्जुन वहां पर थे उनको पता लगा अर्जुन आकर के गाय सांत्वना दिए जिसे आप विलाप मत कीजिए और उनको दोष मत दी आपका लड़का इस बार होगा, जब होने को होगा, जब आप अपनी माता के गर्भ में आएगा उसमें मुझे सूचित करेंगे और मैं ऐसा उपाय कर दूंगा जो लड़का मरे। मुझे बड़ा बचाने वाला आ गया, स्वयं कृष्ण नहीं बचा सके, प्रद्युम्न जी अनुरूप जी संकर्षण बलदेव भी नहीं बचा सके, अब तुम बचा दे, जा जो अपने काम में जाओ, यहाँ मकान हमारे पास, हमने बहुत लोगों को दे उनको झटक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं तुम ऐसा मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ यदि तुम्हारे बच्चे को मैं नहीं बचा दिया तो मैं आदमी जलकर से मर जाऊँ। उन्होंने कहा जब से ठीक है मैं जा रहा हूँ और यदि होगा समय पर तुमको बताऊंगा, तुम देख ये सब चला गया। और समय पर जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो अर्जुन को खबर दी कि हमारी पत्नी को बच्चा होने वाला है, तो वो आए और आ करके इसीलिए द्वारका में ठहर गए थे और जिस घर में सौरी गई था मैं जहाँ पर बच्चा होने वाला था, सौरी थी, पहले सौरी गृह करते थे अब तो सौरी गृह प्रिय अस्पताल में और कहाँ कहाँ
प्रसूति गृह लिखा रहता है।
हाँ प्रसूति गृह पहले होता था धर्म, तो प्रसूति गृह में वो थी और वहीं से अपने बाणों से ऐसा बनाया जिसमें हवा भी प्रवेश करके उसके भीतर में मर जाए और खुद धनुष बाण लेकर के वहां पर पारा देने लगे। तीन रात ठीक समय पर बच्चा पैदा हुआ, आंखिया रोया और रो करके बच्चा शरीर ही न जाने कहां चला गया। और बार बार तो बच्चे रह जाते थे, दिखाई पड़ते थे मरे, इस बार दिखाई नहीं मिला और तो शरीर ही वो बस कहने कहां चला। ब्राह्मण देखकर के अर्जुन को और उनकी बड़ी निंदा करने लगा, बड़ा अनुधर हुआ, सौ दो गांधी को दूसरे को दे प्रसाद अपनी बल की ढील मारता है, काम आने पर कुछ भी काम नहीं होता। सारी कृष्ण बलदेव ही नहीं रक्षा कर सके और वो सब नहीं रखते, सारी जगियों की बड़ी सारी सभा विशाल वो नहीं रक्षा कर सके, तुम क्या रक्षा करेगा, जाओ चूड़ी उड़ी पहन करके घर में बैठे ऐसे ऐसे बात है कहा। तो अर्जुन ने देखा जिसकी सभी अच्छा मैं देखता हूँ ये कहाँ गया, इसलिए पृथ्वी की जहाँ कहाँ हो सकता है वो सब देखा। इसके बाद में जमपुरी गए, वहां पर भी देखा, वहां पर भी पता नहीं है। फिर इंद्रपुरी इत्यादि जो जो सब जीवों के जाने की जगह है वो सब तो देखा, कहीं भी उनको पता नहीं है। अंत में मुरझाए हुए मन से पृथ्वी लोक में द्वारका में आए और सीता बनाने में और सीता बना करके धनु समय तो उसमें जल करके मर जाए। उस समय कृष्ण बोले कि भाई ऐसे ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता है, महाभारत में भी तुमने दो एक बार ऐसी प्रतिज्ञा की व्याग्रस्त को बदल त्यागी का बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाया और तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कर दी जैसे बड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है अभी मरो मत, चेष्टा तो हम करते हैं, तुम हमारे साथ में चलो। ये सबसे दिव्य घोड़े और दिव्य रथ लिया और दिव्य घोड़े लगा था, दिव्य माने क्या जो कि हवा पानी जल वायु आकाश अग्नि इत्यादि से भी अच्छे रहते हैं, बिना हवा के भी जीव जाएंगे, अग्नि में भी नहीं जलेंगे, बिना अग्नि के भी जीवित रहेंगे, हम लोग बिना आपके जीवित रहेंगे कि नहीं, बिना आपके जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, बिना हवा के बिने, बिना पानी के बिने, बिना मट्टी के बिना बिने, बिना आकाश के बिने जीवित रह, प्रकृति के बिना भी। तो ये सब ऐसी चीजें ऐसा किया जो इनकी कोई भी हेल्प लेना पड़े अर्थात अपराध कोई प्रकाश करते हुए उससे भी आगे बढ़े, बढ़ करके कहाँ पहुंचे
महाकालपुरम
भी पार करके कर्णाद्री समुद्र में वहां पर जहाँ विष्णु रहते हैं महाकाल जिनका नाम है सुहाग्रस्थी का जिनका नाम है ब्रह्माचारी के जो उपास्य गर्भोदशाई है उनके भी मूल है। वहां पर पहुंचे, उनको देख करके उन लोगों ने वहां पर जो विष्णु थे भगवान नारायण इनका बड़ा आदर किया, इनके अंश हैं कृष्ण के, इसलिए उन्होंने गलती छोड़ दी और कृष्ण को वहां पर और अर्जुन को भी आ करके बड़ा कैसे आप लोग पधारे तो हम लोग इसलिए पधारे। उन्होंने कहा जैसे बच्चे हैं वो सब यहीं पर हैं, मैं जो आप लोगों के दर्शनों के लिए ही इनको लाया था,
जाके दर्शन करने से ऐसे कुछ गलियों नहीं बोल सुन भाई,
द्वारका में जाने से दर्शन नहीं होता, द्वारका उससे बहुत ऊंची है, उसके ऊपर बैकुंठ लोग बैकुंठ से ऊपर
तो उनके विष्णु द्वारका नहीं जा सकते हैं।
नहीं वहाँ जाएंगे तो द्वारका भी हो
जाएंगे, द्वारका में
इनका जाना इनका जाना तो बहुत ऊपर की चीज है द्वारका, उनका यही अंश ही यहाँ पर रहेगा। और द्वारकापुर में आएंगे तो जैसे ब्रह्मा जी गए देखा जो लाखों कोटि ब्रह्मा वहां पर इकट्ठे हैं और इनको भीड़ में भीतर पहुंचने की इनको जगह ही नहीं मिली, वंदना करने के लिए भी इनको अवकाश नहीं मिला, ऐसे हो सकता था जिनके लिए
कारण से जिसमें तो एक है ब्रह्मा बोलते हैं कारण से जिसमें बोलते
हो सकता है कि कोई ऐसा आश्चर्य प्रकाश कर दे वो नहीं क्योंकि वो लीला कारण है, इसलिए वो हमारे यहाँ आएंगे उनके दर्शन देंगे, होगी कोई बात ऐसी मजा मेरी जीवयोदित सुना मया को नीतो भू धर्म गुप्त ये जो बीजों की जो आत्मा है बच्चों की मैं आपके इस स्वरूप को दोनों को देखने के लिए जुगलियों में अर्जुन और कृष्ण और नारायण कृष्ण में कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए मैं देखने के लिए ही मैं दिदिक्षित हूं, दिदिक्षित मैंने इच्छा से अभिलाषा
देखने की
मैं आपके इन सब बच्चों को यहाँ पर ले आया हूँ, भूई अपने धाम में ले आया बच्चों को और धर्म गुप्त आप जो दोनों हैं धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कलावतीर्ण माने कला के रूप में या कला के साथ में कला के रूप में आप आए हैं, मेरे कला है मैं अंतिम हूँ हमारे कला के रूप में है ऐसा अर्थ नहीं होगा, किंतु साधारण लोग ऐसा ही अर्थ मैं इसलिए ले आया था ये आप मेरे कला है कला के रूप में हो ऐसा नहीं, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के पहले ने दूसरे श्लोक में
रामेण सह
क्या अंशेन सह अंशेन सा और अंशेन सा माने अंश के सहित में आया, ऐसे ही समस्त कलाओं के साथ में तत्व समस्त जितने भी श्लोक तत्व हैं सब शक्तिमान तत्व के सहित आप अवतीर्ण में धर्म की रक्षा कर, धर्म की रक्षा माने क्या कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन इत्यादि की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और ये जो मुक्त पुरुष है उनके क्या क्या धर्म है उसकी भी रक्षा के लिए उन चीजों को देने के लिए यहाँ तक कि गोपी प्रेम तक ऊपर में पहुंच जाएगी ये सब धर्म गुप्त के अंतर्गत है, आप अवतीर्ण हुए हैं भरासुरान हत्वा यह पूरक परेतम अतः जल्दी से आप भूमि का धार धारण कर और असुरों का संहार कर उनको जल्दी से मेरे पास में भेजिए। ये नहीं कहा जैसे आप आ जाइए जल्दी से भूमि का धार धारण करके उन असुरों को मेरे भेजिए मेरी मुक्ति के लिए
मेरे
कारागार में है ना
कारागार
उसमें कौन सी मुक्ति ये अनुज असुरों को इससे भरा सुगान असुरों का भार हरण करके उनको भेजिए जिससे कि वो हमारे में
हमारे जेल खाने
तो यहाँ पर ये बताया कि मैं तुम्हें दर्शन करने के लिए
तुम गतिदायक
दर्शन करने के लिए मैंने आप लोगों के इतने सुंदर चारु दर्शन है उसको दर्शन करने के लिए मैं ही दर्शन के लिए इसलिए भगवत तत्वों का भी चित्त आकर्षण करने वाले उनका जब द्वारकाधीश को ला रहे हैं तो सिंगारस वाले कृष्ण की तो बात ही क्या है ये तो द्वारकाधीश वाले को ला रहे तब उनका तो कुछ कितना होगा। फिर दूसरा एक और उदाहरण दे रहे हैं यहाँ दिया शक्तिमान तत्व के लिए अब यहाँ दे रहे हैं लक्ष्मी आदि लक्ष्मीकांत आदि का ये दिया और यहाँ दे रहे हैं अब लक्ष्मी आदि नारियों के लिए आकर्षण की बात कस्यानुभाव अस्तन देव विस्महे सर्वांगृदेनो स्पर्शाधिकार जगपांशयाप्तपो विहाय कामानुसूचिरं भीतप्रता कस्यानुभाव अस्तन देव विस्महे जब नाग पत्नियां अपने पति की रक्षा के लिए काली दमन कृष्ण से प्रार्थना करनी है सब प्रार्थना किया अब तक शांत बैठी हुई सोच रही थी कि हम लोग विधवा हो जाए ये भगवान का विरोध कर रहा है कृष्ण का इतना सो कोमल और उसमें ये काट रहा है वहां गले में हृदय में जिससे अभी स्वस्थ मर जाए ये बड़ा भारी निष्ठुर है इसका मर जाना ही लगता है कृष्ण का विरोधियों का जगत मराना अच्छा है इसलिए मर गया हम विश्वास बैठे थोड़ी देर के बाद में कृष्ण के प्रभाव को देख करके वो सोचा और गरुड़ हमारा कुछ भी न कर सके किंतु ये गरुड़ से भी बड़े दूर फर्क है आज इनके पैरों की तात्पनिक भी भार में सहन करने में असमर्थ हूं ये है कौन कहीं हमारी पत्नियां हमको उचित सलाह देती थी इनसे विरोध मत करो कोई वही विष्णु तो नहीं है अब समझा तो वो नारायण का शरणागत होकर के प्रभु मेरी रक्षा करे इस प्रकार से कहें नाग पत्नियों ने देखा जिसका भाव बदल गया
शरणागत हो
गया शरणागत हो गया ठीक तब वो उनसे प्रार्थना कृष्ण के लिए प्रार्थना और प्रभु आप इसको छोड़ दीजिए इसको नहीं छोड़ने से इसको मारने से हम विधवा हो जाएंगे इसलिए आप कृपा करके इसको जीवन दान कीजिए। हम तो देखती हैं ये कह रही हैं कच्चा अनुभव अच्छा देवित में है हम लोग ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इनके चरण कमल आपके चरण कमलों की धूली को पाने के लिए लक्ष्मी स्वयं इसके लिए तपस्या करती हैं लालसा के लिए और इसको ये अपने आप आ गया ये चाहता है कि इनके चरणों को उतार करके फेंक दें और आप इतने दयालु अपनी चरणों की धूली इसके केवल एक सिर पर नहीं इसके जितने भी सिंह हैं सर्वत्र ही हमारे चरणों की धूली जिस चरणों की धूली के स्पर्श के लिए ब्रह्मा और शंकर की तो बात ही क्या ये स्वयं लक्ष्मी देवी भी समान रेणु स्पर्शाधिकार उनको नहीं मिली और इसको अधिकार मिल गया इस विषय के और नहीं चाहने पर भी जोर जबरदस्ती दिया जा रहा है। न जाने कौन कौन ये पूर्व जन्म में तपस्या की थी अथवा क्या किया था, हम नहीं जानते। तस्या अनुभव अश्वन देव, हम नहीं जानते हैं कि इसका कैसे इसका भगवान की चरण भूमि को स्पष्ट करने के लिए इसको अधिकार मिल गया। भगवान का ऐसे चरण भूमि को पाने के लिए तपस्या से होगा, कोई तपस्या से नहीं, साधारण साधन भजन से। ये तो भगवान की है कि कृपा है, न जाने कैसे हो गया। यदि हो गया होगा तो बस उनकी पत्नियों की कुछ ऊपर में भगवान की कृपा होगी इसलिए हुआ, अन्यथा ये होना असंभव। उसी के लिए वो कह रहे हैं जगवान क्या श्री लंगा करो कपे, श्री मैंने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी सब समय भगवान नारायण की सेवा करती है, किंतु उनके अंदर में भी ये बात बंसा हुई। कैसे हुई, कैसे उनको हुई? एक तो सर्वान सर्वज्ञानी है इसलिए भी हो सकता है, अथवा नारद इत्यादि जी के कहने से हुआ होगा। जैसे रुक्मिणी इत्यादि को बतलाया नारद जी, ऐसे उन्होंने बतलाया होगा सुन करके कृष्ण के प्रति आकृष्ट और वृंदावन में आकर के बेल बन में बहुत तपस्या की उन्होंने की किया। जगबान क्या जिनकी इच्छा से किसके लिए, और चरण की भूमि को स्पर्श करने के लिए ग्रहण करने के लिए वो वृंदावन में बेल बन में आकर के तपस्या की, किंतु कहीं नहीं लिखा जो मिल गए कि नहीं, ये नहीं लिखा। श्री ललना, ललना में क्या ललना, ललना माने स्त्री होता है,
अत्यंत सुंदरी स्त्री,
अत्यंत अनुपम सुंदरी, साथ ही साथ में अत्यंत सुकोमल निग्ध सुंदर सुगंध युक्त पद्मगंधा श्री ललना आचार्य तपो कठोर व्रत किया, इतने कोमल अंग उनके और वो इतना कठोर तपस्या किया किंतु उनको मिली नहीं, और इसको वो चरण की धूली मिल गई। विहाय कामा, कैसे अपनी समस्त कामनाओं को छोड़कर, लक्ष्मी जी ने की क्या कामना हो सकती है, वैकुंठ में जाते हैं उनमें कोई कामना होती है कि नहीं, सब जगत के समस्त कामनाओं को छोड़कर के एकमात्र प्रभु की सेवा की कामना। लक्ष्मी जी ने प्रभु नारायण की चरणों की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा, इसको भी उन्होंने छोड़ दिया। विहाय काम, कैसे कैसे सेवा उसको भी छोड़ दिया और छोड़ करके यहाँ पर बैठी हुई है तपस्या कर रही है। सूची रंगित व्रता बहुत दिनों तक, और जित व्रता मैंने वर्तमान क्या खाना पीना छोड़ दिया, फल भी नहीं दिया, दूध भी नहीं लिया,
सूर्य
पानी भी नहीं लिया, हवा भी छोड़ दिया, ध्रुव जितनी तपस्या के थे उनसे भी ऊपर, ऐसी कठोर तपस्या होने की बहुत दिन। नारायण की भी परवाह नहीं की सेवा की, सब वैसी ऐसी कामना भी छोड़ दी, संसारिक को छोड़ा ही, वो भी कामना करती तपस्या की। शायद कृष्ण मिले होंगे जी, या हम आए ही नहीं हो, जानते होंगे इनके हृदय की बात, जैसे इनसे होगा नहीं, वो कहेंगे कृष्ण आकर के अच्छा तुम वर्मा मैं ब्रज में गोपियां जैसे आपके साथ में नित्य इत्यादि करती हैं, मैं उसी तरह से रात में सम्मिल और आपकी सेवा करता हूँ, मैंने श्रृंगार रूप है ना, इसलिए श्रृंगार रूप में आपकी सेवा। शत्रुघ्न कहा एक बात कर, बहुत सीधी साधु की बात है, तुम गोपी के रूप में जन्म ग्रहण करो और फिर दूसरे गोप से शादी हो जाएगी और फिर वहां मैं रहूंगा, वहां पर हमारे रात में सम्मिलित हो जाएंगे। इस बात के लिए वो राजी नहीं, मैं ब्राह्मणी गोपी कैसे बनू और गोवर गोपियों के साथ गोपों के साथ में हमारी शादी होगी, आपके साथ में शादी होगी ये तो मुझे मंजूर है, किंतु वो शादी उन लोगों गोकुल के साथ में शादी हमको मंजूर। तो उन्होंने कृष्ण रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में नारायण आए, अरे मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कितने हजारों वर्षों से और तुम यहाँ पर बैठी मना जुना करके बात सुन करके फिर इस तरह से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं। अर्थात लक्ष्मियों को भी कृष्ण के दर्शन की और उनके चरणों की धूनी की उनको आकांक्षा होती है, किंतु यह भी उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि एक चीज में वो प्रतिष्ठित है। इसीलिए वो ब्राह्मण पत्नी जो मथुरा की थी यज्ञ पत्नियां उनको भी इसी कारण से नहीं मिले। तब हाँ उनके लिए एक आशा है उस जन्म के बाद, उस जन्म में तो नहीं मिले।
अच्छा रासलीला में ये लोग सम्मिलित नहीं थी?
कौन
ब्राह्मण का
ब्राह्मण पत्नी के रूप में वो नहीं सम्मिलित हो सकते।
जैसे गोपियां गुरुमय शरीर त्याग करके गए तो ये भी ऐसे जा सकते
नहीं,
गोप के साथ ही जा सकते।
उन्होंने गुरुमय देश छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने भी जिनको रोक दिया था वो कृष्ण से आकर सुनिंद हो गए, किंतु राशि इत्यादि में उनकी लीला में सम्मिलित नहीं, क्योंकि उसमें अभी कसाय है। वो जन्मांतर में तपस्या करते 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 भाव आने पर गोपियों का अनुगत में जब भजन करेंगी ना तब सब जाकर के फिर दूसरे जन्म में वृंदावन में जन्म होकर के गोपी शरीर में आकर के गोपियों के नित्य सिद्धाओं के साथ में आएंगी और तब से मुझे होता ऐसे नहीं है। श्रुतियों ने ऐसा किया, इस ब्राह्मणियों का हो गया।
ब्राह्मणियों को कौन सा कथा है?
यही तो ब्राह्मण होने का कथा
है।
इसलिए कहते हैं जिसे लक्ष्मीकांत आदि और लक्ष्मीकांत आदि ये सब लोगों को चित्त को हरण कर लेते हैं कृष्ण अपने से इतना अभी सुसाधारण आप दुर्ग हरे आत्मनार्म आप जिसको ले आ रहे हैं उन्होंने आत्म पर पर्यंत कहा आप उसके लिए ला रहे अपना माधुर्य आत्म माधुर्य हरे आत्मनार्म अपना अपन चाहे परि त्यागेंगे अपना ही अपना देख करके मुग्ध हो जाते हैं और अपने रूप का स्वागत करना चाहते हैं। ये ऐसे कृष्ण ऐसा किसी भी रूप में नहीं है, किसी अवतार में राम इत्यादि में भी नहीं है, द्वारका भी इसमें भी नहीं है और विष्णु इत्यादि राम इत्यादि के तो बात ही क्या, ये किसी में भी नहीं है। इसलिए कृष्ण का यह रूप स्वयं रूप और स्वयं रूप में भी प्रजनंद स्वयं रूप में भी यह श्रृंगार और स्वराज मय मूर्ति है। अब बतलाए अपने आप कैसे उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है उसके लिए ललित माधव का एक श्लोक यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे। अपर कलित पूर्व चमत्कारी प्रतिमम गरीयानेश माधुर्य पूर्व अयम अहम अपि संत प्रेक्ष जा चित्त मुग्ध चेता सरतम काम ये अपरिकलित। अपरिकलित मैंने जो पहले कभी अनुभूत नहीं हुआ अपरिकलित कभी अनर्पित करी की रात जैसे है कभी भी नहीं दिया गया यहाँ पर कभी भी अनुभूति आसपास जो नहीं हुआ अपरिकलित पूर्वम कश्चमत्कारकारी अत्यंत चमत्कारकारी। चमत्कारी किसको कहते हैं? जो कभी भी न दिख पड़े अत्यंत सुंदर सुहावना मधुर हो और अद्भुत हो जो चित्त में शोक पैदा कर दे विस्तरित नेत्र से देखे इसको कहते हैं चमत्कारकारी है? जो कभी कृष्ण का रूप ही ऐसा है नौ नौ आयमान जब भी कोई देखेगा तब नित्य रूप देखेगा यह श्रृंगार मम गरियाने समाधुर्य सुरति मम कृष्ण कह रहे हैं या रूप देख करके मेरे मन में भी इसकी गरिमा देख करके गरियान ऐसा इतना गरियान माने सबसे श्रेष्ठ यह रूप है माधुर्य में कोमलता में मधुर में सब विषयों में विशेष करके चार रूपों में रूप गुण लीला में लीला देवी माधुरी में माधुर्य पूरा माधुर्य पूरा माने एक सरल माधुर्य है माधुर्य किंतु सरल और एक है
घना
घना घना सभी घना घना माने पूर को कहते हैं घना माधुर्य पूर माधुर्य का यह पूर है घना भाव आयम अपनी हंत हंत माने क्यों
हंत विस्मय
विस्मय नहीं उनको बड़ा खेद है
खेदे विस्मय दो समय हंत
है किंतु यहाँ पर है खेद क्यों खेद मैं इसको पाना चाहता था मुझे मिला नहीं इसलिए खेद मैं राधिका की भांति इस रूप को आस्वादन करना चाहता था किंतु मेरे लिए संभव नहीं क्यों क्यों नहीं हुआ राधिका जैसा भाव हमारा अंदर में नहीं है बिना भाव के वो देखा नहीं वो चीज की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए करें कि राधिका का यदि भाव होता है हमारे अंदर में तो कहीं संभव हो सकता उनमें है महाभाव अपना इनमें वैसा नहीं अक्षय जाति महाभाव इनमें अपना राधिका जैसा भाव नहीं इसलिए राधिका के भाव के लिए उन्होंने फिर से चैतन्य महापुरुष के रूप में आकर के सत्य विस्तार साधन तो अयम अपनी संत प्रेक्ष लुब्ध चेता सरसम उपभोक्तम काम राधे सत्तम मैंने उत्कंठा के साथ अत्यंत उत्कंठित होगा और सत्तम मैंने केवल उत्कंठा नहीं सभी उत्कंठा हो सकती काम युक्त प्रबल उत्कंठा जिसको जमीन मणि में काम जो बता है प्रेम कृष्ण के प्रति वैसा समात्मिका भक्ति ऐसे से युक्त होकर के जो परम उत्कंठा उनसे मिलने की होती है ऐसे हमारी जीवन की प्रति उत्कंठा किंतु मैं उसे पा नहीं सका कहते हैं जिसे ये अपने लिए कृष्ण भी आया इसलिए कृष्ण का यह रूप जो है कृष्ण के समस्त रूपों में यहाँ तक स्वयं रूप में भी बाल्य पौगंड नव्य किशोर मैंने आदि किशोर अंत किशोर मध्य किशोर इत्यादि ये सब में परम सुंदर तो चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुपति उपाध्याय के यहाँ जो श्लोक सुना था ऐसा उनका श्लोक था
श्यामम एव परम रूपम
श्याम एव श्यामम एव परम रूपम पूर्णिमा यही तो संक्षेप पहले कृष्ण है तो स्वरूप अब इससे कोई अधिक स्वरूप कृष्ण का वर्णन नहीं हो सकता जो कुछ माधुर्य संबंध जो कुछ था इन्होंने परिपूर्ण रूप से यहाँ तक की और की तो बात क्या स्वयं कृष्ण भी इस रूप को देख करके यही तो संक्षेप कहिए कृष्ण रसोल अब ये कृष्ण कौन भी पहले तो समस्त सड़ स्पर्य पूर्ण दूसरा हुआ सचित आनंदमय सचित आनंदमय सर्वशक्तिमान है सर्व कारण कारण है और सब रसों के आश्रय और विषय और उस पर भी नौ नवायमान चार माधुरियों से जीतते हैं रूप माधुरी गुरु माधुरी लीला और अखिल रसामृत मूर्ति है और सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं यहाँ तक की और भगवानों की तो बात ही क्या है स्वयं जो भगवान स्वयं कृष्ण है उनके भी चित्त को हरण करने वाले
नवीन मगर
और उनकी समस्त कांताओं को राधा से आरंभ कर जितनी भी उनकी कांताएं हैं देवलोक तक में भी सबके चित्त को हरण कर
फिर मूर्तिमान सिंह
और मूर्तिमान सिंह इत्यादि ये कृष्ण का जी सब। अच्छा बात्सल्य रस के ये विषय होंगे कि नहीं ये कृष्ण नहीं सखरस के होंगे नहीं ज्ञान का रूप केवल प्रकट होगा ऐसे भाव वाली गोपियों के अतिरिक्त और कहीं ये प्रकट ही नहीं हो सकता संभव ही नहीं है। इसलिए यह संक्षेप में कृष्ण का ये तत्व वर्णन और ऐरे कहीं संक्षेपे कहीं आराधा तत्व रूप और कितना नजर
खराब
नएगा कि अब वे कहूं राधा तत्व रूप अब राधा तत्व कृष्ण तत्व निरूपण करने में राधा जी को छोड़कर के कृष्ण का तत्व निरूपण नहीं होता ऐसे राधा जी का तत्व निरूपण करने में कृष्ण का तत्व नहीं होगा तो अच्छा मान लो कि हम भक्तों का कोई स्वरूप वर्णन कर रहे
भगवान आए
तो भगवान का स्वरूप नहीं वर्णन करने से होगा
संपूर्ण नहीं होगा
नहीं संपूर्ण माने होगा ही और भगवान का रूप जब वर्णन करना होगा ना तो भक्तों का जरूर होगा भगवान का रूप वर्णन करेंगे तो गुरु जी को छोड़कर के वर्णन करें तो होगा ना भक्तों के प्रधान तो गुरु जी हैं इसलिए गुरु जी का भी जरूर वर्णन करना पड़ेगा बिना गुरु के भगवान का नहीं और भगवान के बिना अब यहाँ पर राधा जी का तत्व वर्णन करना है अच्छा कृष्ण का रूप जो वर्णन किया हुआ अंत में ये लाए राधि केव समस्त रूप वर्णन किया किंतु अंत में ये क्या बतला कृष्ण का तत्व बतला रहे उसमें राधिका के भांति ही कृष्ण को अपने रूप को आस्वादन करने की अभिलाषा किंतु खेद हुआ कि मैं इसको पाक नहीं सका अर्थात राधिका के भांति क्यों राधिका में ऐसी चीज है जो हमारे अंदर नहीं है वहां पर वो पराभूत हो गए उस तत्व से क्योंकि कृष्ण ने अपने मुख से ही बतलाया है वो राधिका के लिए ही बतला है न पा रहे हम राधिका के साथ नहीं कृष्ण का ऐसी रसराज मूर्ति होगी अन्यथा नहीं होगी गोपियों के साथ में भी नहीं होगी होगी किंतु इतनी चमत्कारकारी रूप नहीं होगा जैसे राधिका के साथ में होगा वहां पर कृष्ण संपूर्ण रूप से प्रसन्न चित्त रहेंगे और यदि राधिका जी न रहे और सब गोपियां रहे तो कृष्ण का मुख प्रसन्न रहेगा मालूम होगा जब कुछ चीज का अभाव रह गया इसलिए कृष्ण में उस रस में भी अभाव इसलिए उनके साथ पूरा रहने में ही कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य सर्वविध ऐश्वर्य मोहनत्व इत्यादि सब प्रकार उसी प्रकार से हमारे अभी बृहद भगवतामृत हम लोगों ने रसाला जो पाठ किया
रसायन
उसमें देखा था जहाँ जहाँ कृष्ण का गोपियों के साथ में संबंध है यहाँ प्रतिभि स्मृतितानों को दिया और किसका लिया अक्रूर जी का लिया उद्धव जी का लिया ये सब लोग जो कृष्ण रूप का वर्णन कर रहे हैं उस सब में राधिका जी को जहाँ या गोपियों को रहे कहीं वहां सुंदर उत्सव छुट्टी हुआ और कृष्ण उसको ग्रहण श्रवण करें और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कृष्ण का चित्र संपूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं है प्रसन्न करने के लिए ऐसा यही है आप राधा जी का जब वर्णन करें तो यह बतला है कृष्ण अनंत शक्ति साथे तीन प्रधान कृष्ण में अनंत शक्ति और अनंत शक्ति एक पराशक्ति से प्रकाशित कृष्ण एक है इसलिए उनकी शक्ति भी एक अनंत शक्तियां नहीं है किंतु उसके प्रकाश
एक शक्ति के ही अनंत प्रकाश
जैसे एक कृष्ण के कोटि कोटि प्रकाश हैं, ऐसे एक ही शक्ति के कोटि कोटि प्रकाश, अनंत प्रकाश। तो अनंत शक्ति उसमें तीन प्रधान है। किस शक्ति? माया शक्ति, जीव शक्ति। ना ये सब किस लिए बतला रहे हैं? ये सब नहीं बतलाएंगे तो राधा जी की धारणा नहीं आएगी, राधा जी की धारणा नहीं आएगी। एक आदमी ने कहा, अच्छा ये कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, सुनेगा महाप्रभु कितने बड़े विद्वान हैं। एक पंडित उठे, बड़े सूचीधर हैं, और संसार के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, भट्टाचार्य और कौन,
चक्रवर्ती,
विद्या के चक्रवर्ती और
विद्यालंकार
नैरत्न, जितने दर्शन आचार्य हैं, सब विषय में पारंगत हैं विद्वान, और उनको एक सेकंड के अंदर में परास्त कर दिया एक प्रश्न के उत्तर में। अब बतलाओ ये वो महाप्रभु की कैसे विद्वान, केशव काश्मीर को परास्त कर दिया ने? और विद्वान सुनेंगे ये कैसे विद्वान, जगत संसार में जितने थे सबको दीक्षा देने वाले, सन्यासियों को भी सन्यासी बनाने वाले,
आप
कैसे बड़े विद्वान, जो गए विद्या पढ़ने के लिए कहां, मिथिला में, और जब उस विद्या पढ़ लिए न्याय इत्यादि नपजन न्याय पर सूक्ष्म विवेचन, एक सिंह को लाख भाग किया जाए उस पर भी विचार करने वाले हैं, अनुमान इत्यादि सब, इसमें कौन चीज कैसी होगी उसी के लिए ही कितना विचार, अनुमान इत्यादि उस पर ये विचार करने वाले। तो वो आने लगे तो उन लोगों ने उनकी पुस्तकें सब ले ली, ये बड़ा मेधावी लड़का है, ये जाकर के जहां जाएगा स्कूल खोल देगा, वहीं पर ये विद्या आरम्भ हो जाएगा, मिथिला का नाम टूट जाएगा,
कम हो जाएगा,
सब पुस्तकें ले। बड़ा इनको दुख हुआ, फिर उन्होंने कहा कोई बात, बस वहां से चल दिए और अपने सीमा में आए, अपने उस सीमा में रहते मिथिला के, तब तो वो लोग गड़बड़ करेंगे, इसलिए अपनी राज्य की सीमा में, बंगाल की सीमा में आए, तो सोचा जो सब तो भूल जाएंगे जल्दी से, इसलिए वहीं पर बैठ करके और सब जितना पढ़ा था वो सबको लिख लिया, पूरा पुस्तक के पुस्तक जितनी पुस्तकें पढ़ी थी ना सब लिख लिया लेकर के, और पुस्तक ऐसे धुरंधर विद्वान, और महाप्रभु जी को उनको हराने में कितना, जो इस सूत्र से उन्होंने निर्विशेष बात की स्थापना की थी, निराकार की स्थापना कर, उसी श्लोक से ही उन्होंने प्रमाणित कर दिया ये भगवान का रूप है, ये कृष्ण ही रूप है, वो निराकार नहीं है, जगत असत्य नहीं है, वो परम सुंदर समान गुणवान, उसी एक सूत्र के द्वारा ही कर दिया, उनकी बोलती भी बन गई। तो महाप्रभु जी कैसे विद्वान है, इसको कहा जाएगा ना ऐसा गुण मत रखते, ऐसे विद्वान है कैसे, जा रहे थे बचपन में न्याय की, न्याय पढ़ रहे थे, न्याय के छात्र नहीं थे किंतु न्याय जानते, न्याय की एक सुमंजरी कुल ग्रंथ है उस पर टीका व्याख्या लिखना, तो उनके साथ साथ में वो पंडित थे, क्या नाम, उन्होंने 24 पत्र लिखे हैं, रघुनंदन भट्टाचार्य जी थे, बहुत विद्वान अपने को समझता था वो लड़का छात्र, बहुत ब्रिलियंट था, महाप्रभु से कुछ ऊपर पड़ता था। एक दिन बाई चांस दोनों नौका में कहीं बैठ करके जा रहे थे, तो उस लड़के ने कहा कि हमने इस पर एक पुष्पांजलि पर टीका है, तो महाप्रभु जी ने कहा जैसे हमने भी थोड़ी सी लिखी है, तो उसने कहा कि देखें, तो महाप्रभु जी ने उसको दे दिया, वो पढ़ा तो पढ़ते गया, देखता गया और उसका मुख उतरता गया, जितना ही पढ़ा उतना ही मुख उतरता गया, और आंसू छलकते छलकते अंत में तो उसके आंसू एकदम गिरने लगे और उसने पुस्तक बंद कर दी। बहुत दुखी हो अजय सखे, आप बड़े दुखी हो गए क्यों, रोने क्यों लगे, क्या बात हुई इसको पढ़ने से? तो हमने लिखा था सूचा था में इसके चक्कर का और कोई ग्रंथ नहीं, और जगत के बड़े बड़े विद्वान लोग इसकी मान्यता करें। मैं देखा कि जो तुमने जो लिखा उसके चरणों की भूमि में भी नहीं लगेगा, इसमें कोई पूछेगा ही नहीं, अभी इसलिए रो रहे बस छाया और पुस्तक गंगा में जा। कैसे विद्वान होंगे ये बतलो, एक विद्वान के लिए बतलाने के लिए जब तक ऐसा नहीं कहा जाएगा तब तक विद्वता
उस पर तो समझ नहीं
है, इसलिए लुप्त किया
मात्र
कोई हम लोग मुझे ऐसा न कहेंगे उनको तो भक्ति का प्रचार, इसलिए कृष्ण रणन तो सीता के तीन प्रधान राधा जी की महिमा वर्णन करने के लिए ये सब जानना पड़ेगा, भगवान का भजन करने के लिए कृष्ण का भी जो बतलाया वो जानना पड़ेगा, पर मैं नहीं जानता हमको जरूरत, हम तो मावा सरकाएंगे बस हो जाएगा हम वृंदावन में फिर वासुनी में मैं झाड़ू दू मैं दूंगा बस यही करूंगा वही और कुछ नहीं करूँ
सज्जा।
ये सब करने की क्या जरूरत है, ये सब जानने खाने की ये मुझको जरूरत नहीं, बस एकदम वहां से भाई ये नहीं होगा, जितना सुन इतना तो हर समझ रहा है, तो साधन क्या हुआ, साधन में कष्ट क्या हुआ, खा पीना नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, हवा नहीं खाएंगे, फल खाएंगे, अरे फल तू खाएगा, हमारा खर्चा है एक रुपये का एक दिन और तुम्हारा होगा 50-60 रुपया 100 रुपया एक दिन, तब तक तुम्हारा तुमने क्या किया, मान लिया कि किसी ने हवा नहीं खाया तो क्या किया, उसे क्या हुआ, राधा जी की महिमा जानने के लिए तुमने ठोस रूप में क्या किया, तुमने सब किया इसे भगवान मिल जाएंगे, मैंने नहीं खाऊंगा, मैं चुपचाप रहूंगा, मैं प्राण प्रत्येक क्या करूंगा, तो उसे क्या होगा, ये सब तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे, तपस्या किसको कहते हैं, उसके लिए बस साधन से भी सुना कर बच्चे ठाकुर जी ने जैसे वो राधा जी की कृपा काम गायत्री को अंकिलन करने के लिए ये अक्सर क्या चीज है जिसके लिए किया, उनका भाव क्या है, कैसे ये मिलेगा, रसिक वैष्णव का संग कैसे मिलेगा, ये होने के बाद ही राधा जी और कृष्ण मिलेंगे और सुनील झाड़ू हाथ में मिलेगा, श्यामानंद कुंज में झाड़ू दे रहे थे कैसे कैसे दिया, ऐसे दे दिया जीव गोस्वामी जी के छात्र बनकर उनकी सेवा की, कितना कर्ज है ऐसा, वृंदावन में रह जाएंगे और हो जाएगा हमारा, तो हम लोग भी वृंदावन में रह करके बिना खाए पिए सेवा कुंज में वो चले जाते हैं, शाम को रात न रहते और सवेरे हमारी लाश वहां से निकल जाती, हम तो मिल जाते घर झाड़ू देते थे, इतना सहज नहीं है, इसको कहते हैं आराधना, जैसे सुप्रियों ने आराधना की कृष्ण के लिए किसके के लिए गोपी बनने के लिए, कितना ब्रह्मा जी का कितना कल्प, ब्रह्मा जी कितने बदल गए तब तक ये तपस्या करते हैं, ऐसे तपस्या करनी हुई गुरु की सेवा से तपस्या आरंभ होगी, गुरु और वैष्णव वहीं से सेवा तपस्या होती है, उनके मन को प्रसन्न करने के लिए हम जो कुछ करेंगे वो जैसा तपस्या, इसको छोड़ करके अपने मन से जो कुछ भी करेंगे वो कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए जब हम लोग सचमुच में गुरु जी की स्तुति विधान
करने का नारद जी को पार मिली कैसे, बोले कि साधु जी सेवा की इसलिए मिले, नहीं तो नहीं,
ठीक है
सबसे हुआ दीर्घयापी सबसे हुए,
और नारद जी को इतना देर कैसे लग गया है, क्या बतला रहा था
वो कसाई की
बता, नारद जी को कसाय क्या था जो इतने दिन तक तुमको रहना पड़ा,
मेरे मन में दर्शन नहीं दिया, बोले कि इस जन्म में दर्शन है, किस सात्विक बड़ो बात
उनकी इच्छा थी कि मैं वन में बात करूंगा शास्त्री और भजन करूंगा।
ये फिल्म कोई रखा है
इतना बड़ा बड़ी बात शुभ भरती वैष्णव सत्य यदि हो उनके साथ में मरेंगे मर जाएंगे किंतु उनके संग में रह करके ऐसे भावों की पुष्टि करेंगे और इसको कहते हैं साधन उपयुक्त साधन आराधना। और अपने मन से हम करेंगे तो कुछ जानते तो हैं खूब बैराग्य सभी आदमी सभी और क्या करेंगे क्या करेगा तू अपने मन से क्या करेगा तू कुछ भी नहीं वहां की धूली उठा करके लगाएगा वो नियम है जमुना राधा कुंड में तुम स्नान करेगा स्नान नहीं तो राधा कुंड में डूब बारो कभी होगा भाई नहीं होगा। इसलिए वैष्णव चरणों की सेवा करते हुए सचमुच में साधन उपयुक्त साधन भजन करो। हम लोग को जो कुछ भी प्राप्त नहीं है किंतु जो कुछ भी हुआ गुरु वैष्णव की सेवा इसीलिए हम लोग सीखे हैं तुम लोग भी इसी पथ पर चलो कभी भी इधर उधर मन मत करो इधर उधर नहीं तो सब जंजाल हो जाए। इसलिए इन सबको जानना पड़ेगा ये ऐसे ही उन्होंने चैतन्य जी सामर्थ्य लिख करके और ये ग्रंथ ने लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं इसको ग्रंथों को कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म की कितनी स्थिति थी और गुरु वैष्णव की कृपा थी ये सब में हम लोग का धीरे धीरे अब रुचि लगने लगी है प्रवेश होने लगा इनको जानने की उत्कंठा हो रही है। इस जन्म हो दूसरे जन्म हो तुम लोग कभी जब तक ये चीजें नहीं आई तब तक इस भक्ति सिंधु में जाने का प्रवेश नहीं होगा ये समझ रख इसलिए इसको कहते हैं आराधना। इसको कैसे हम समझे और जो विद्या से नहीं होगा कैसे होगा उनकी शुश्रूषा से हरि गुरु वैष्णव की शुश्रूषा से हमारे हृदय में जो भावना उस भावना के द्वारा ही और किसी के इसलिए कहते हैं कि अनंत शक्तियां एक शक्ति पराशक्ति से और पराशक्ति के एक ही के विविध प्रकाश हैं उनमें विविधों में से तीन प्रधान है ये जानना इतना तो जानना ही पड़े नहीं तो राधा जी को समझेंगे कि जगत की कोई नहीं बस इसके अतिरिक्त नहीं जानते हम यहाँ आज तक इसी को अंतरंगा बहिरंगा तथा शक्ति कही जा रहे अंतरंगा स्वरूप शक्ति सदा अब अगले दिन इसके हम लोग तो मन से सुनो भजन करो आगे इन सब चीजों को समझने की चेष्टा करो हृदय में कहीं दौड़ भाग इधर उधर मत करो अभी वो सब कब करना चाहिए जबकि संग न मिले तो खुद गोवर्धन जाओ राधा कुंड में रहो किंतु यदि कोई वैष्णव मिल जाए तो भाई ये सब बारबान कामान बिहार बिहार सब को छोड़ो सब आकांक्षा इत्यादि सब छोड़ करके सुजोग से वैसा संग मिला और फल यदि न मिले तो बस हो गए भजन साधन इसलिए साधन भजन करो भगवान के साथ संस्कार कर तुम लोग पंचा कल्प करो।